अगला फायदा देखते हैं, बेनिफिट ऑफ निकाह। निकाह बाहमी मोहब्बत और अखुव्वत का मौसर तरीन जरिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से ज्यादा कोई चीज़ मौसर नहीं देखी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। ये भी वैसे अजीब ही बात है। आप देखिए कि आपको अपने बाप से प्यार है ना, क्यों ना हो, आप उसकी सुलभ से निकले। माँ से प्यार है, क्यों ना हो, रहम का हिस्सा है। आपको अपने भाइयों से प्यार है ना, क्यों ना हो, एक ही घर से सब आए हैं। थोड़ी देर हम किसी जगह रहते हैं ना, तो हमें उन लोगों से भी प्यार होता है। मसलन बाज़ लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं ये मेरे हज के साथी हैं। वो जी हमने साथ मिलके हज किया था, तो उसकी वजह से ये हमें फ़ायदा हुआ, तो हम खुश हैं। तो आप बताइए कि 9 महीने तो हम सब ने एक ही जगह गुजारे हैं ना, भाई बहनों ने माँ के पेट में, लेकिन शोहर से मोहब्बत कैसे हो जाती है? क्या लगता है आप? कभी अकल को बीच में ला के सोचे ना, तो झुरझुरी आने लगती है। आप देखिए कि एक शरीफ औरत, जिसको आप कह लिए जाए कि मशरकी औरत, हमारे यहाँ मशरकी और मगरबी औरत का टर्म बहुत यूज़ होती है इस मामलों में, लेकिन आप गौर करके देखें कि एक औरत किसी गैर मर्द के लिए, यानी बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली आप कहें कि जिस मर्द से हमारा कोई निकाह नहीं, रिश्ता नहीं, कभी उसके बारे में उसके दिल में कोई अच्छा ख्याल आता है, या दिल चाहता है किसी ऐसे मर्द से बात करें, उसका हाथ थामे? यानी ये कहते हुए भी मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं पसंद करते। अच्छा, जिस मर्द को देख के आपके दिल में शायद ये ख्याल आता होगा कि अच्छा अल्लाह का बंदा ही है बस, जैसा भी है। थोड़ी देर बाद देखते हैं उसकी बीवी बैठती है और उसी के गुनगा रही होती है। मैं कहती इसको इसमें क्या मिला? लेकिन निकाह ऐसी मोहब्बत पैदा कर देता है कि जो किसी दूसरे में नहीं आती, कि अजनबी है ना। बाज़ दफ़ा ज़ुबान नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा कल्चर नहीं मिलता, लेकिन बिल्कुल बिरादरी का फ़र्क। कोई पंजाब का है तो कोई सिंध का है, कोई कश्मीर का है तो कोई अफगानिस्तान का है, लेकिन थोड़े देर साथ रहने के बाद मोहब्बत कैसी होती है कि नज़रें लगी हुई हैं, आए नहीं, खाना खाना है, कहाँ है, क्या है, एक तो फिक्र लग जाता है ना, है किधर, लेकिन कुछ इंतज़ार भी होता है मोहब्बत के साथ, तो अजनबी लोगों में मोहब्बत होती है। अच्छा, आज क्या हुआ? हम कहते हैं नहीं, शौहर से क्या मोहब्बत करनी है, हम पहले बॉयफ्रेंड से मोहब्बत करते हैं, फिर उसको शौहर बनाएंगे। यहाँ अगर आप एक माइंड मैप बनाएं कि मोहब्बत है एक लड़के से जिसको आप शौहर बनाना चाहते हैं, ठीक है, इसको आप कहते हैं लव मैरिज या बॉय फ्रेंडशिप या व्हाट सो एवर, लिविंग टुगेदर आप कहते हैं। अब ये ट्रैक इधर से इधर चल रहा है, इसको आप कहेंगे लव, मोहब्बत। दूसरी सूरत यह कि एक मर्द के साथ आपकी पर्सनल खुद को एसोसिएशन नहीं थी, लेकिन आपके घर वालों के और आपके मशवरे से सब कुछ देखा कि ये मर्द आपके लिए एक अच्छा शौहर साबित होता है, फिर वहां कर दी मंगनी। मंगनी हुई, फिर थोड़ी थोड़ी निस्बत आती है, लेकिन झिझक इतनी होती है कि अच्छा जो होगा देखेंगे। फिर आप उसके साथ रहने लगे, फिर आपको घर ने बताया कि देखो इसकी रिस्पेक्ट करना, इसका ख्याल रखना, बात मानना, ये रिस्पेक्ट है। दो चीजें लिख लें, एक तरफ है लव और एक तरफ है लव वर्सेस रिस्पेक्ट। जब किसी भी कपल में लव होता है लेकिन आपस में रिस्पेक्ट नहीं होती, तो थोड़े ही दिन के बाद बदमजगियां शुरू हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि कितनी लव मैरिजेस जो हैं वो डिवोर्स पे टूटती हैं। अरे भाई क्या हो गया, ये वही लड़का है जिसके लिए माँ बाप के आगे खड़ी हो गई थी तुम, ये वही है जिसके लिए तुमने गोलियां खानी सोच शुरू कर दी थी कि मैं गोलियां खा लूंगी अगर मेरी शादी ना हुई। हाँ, बस मुझे नहीं पता वो ऐसा वैसा, मुझे नहीं पता। अब हुआ क्या कि आपको उसे लव था, आपके ख्याल में वो लव नहीं वैसे होता, सच बताऊं वो बस एक इश्तिहा होती है। खैर, लव था लेकिन रिस्पेक्ट नहीं थी। आप कहते ओए चल बर्तन धो, चल मैंने बर्तन धो दिया, अब तुम इसको मशीन में लगाओ। ये जो ओए तो ओए होती है ना, जिसको आप कहते हैं नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है, और मर्द को भी ऐसे बुलाओ जैसे कि छोटे बच्चे को बुलाते हैं। आप जब रिस्पेक्ट नहीं होती ना, तो वही लड़का जो कल तक आपका बॉयफ्रेंड था ना, वो कहता है इसको क्या हो गया, अब उसके अंदर एक शौहरपन आ चुका है। नतीजा क्या, थोड़े दिन बाद बदमस्की होगी, तो अक्सर नतायज बुरे निकलते हैं। दूसरी तरफ आते हैं, लड़की लड़के की पर्सनल कोई इस तरह की सेटिंग नहीं थी, दिल में तो होती है मंगनी जब हो जाती है, लेकिन कोई आपका इस तरह का इंटरेक्शन नहीं था। अब आप एक जगह रहने पे माइल कर दिए गए, शादी हुई, शादी के बाद खौफ के जज्बात है, लेकिन लड़की एक सबक पढ़ के आई हुई है, और वो कौन सा है, बादब बानसीब का। वो उसको शौहर को अच्छी तरह से पुकार दिया, चले सरताज ना भी कहे, लेकिन उसको आप जनाब तो कह देती है, नाम के साथ सर या जनाब या कुछ लगा देती है, तो वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता लव में बदल जाती है। इस्लाम का खूबसूरत तरीका क्या है, पहले रिस्पेक्ट करो, फिर वो लव में बदलेगी। कई बहुएं घरों में ऐसी आती हैं जिनसे सासों के दिल में कोई मोहब्बत नहीं होती, लेकिन वो लड़कियां इतनी खिदमत गुजार होती हैं कि बाद में उनके रिस्पेक्ट को मोहब्बत में घर वाले बदलते हैं। एक मैंने आर्टिकल कहीं शेयर किया था कि एक बहू आई तो वाजबी सी शक्ल की थी और प्लस घर के भी कोई मैके से इतनी असर रसूख वाली नहीं थी, तो घर का कोई भी बंदा जो उससे ज्यादा बात नहीं करता था। अब एक था कि वो रो धो के बैठ जाती, उसने अपने आप को नेगेटिव जज्बात से ऊपर उठाया और उसने घर वालों की खिदमत शुरू कर दी, देवर की भी कर रही, नन की भी कर रही, सब की कर रही। एक साल के अंदर वो लड़की पूरे घर की आंखों का तारा बन गई। तो मोहब्बत शादी के बाद होगी ना तो ज्यादा देर पाओगी, पहले होगी ना तो आप बेतकल्लुफ जरूर होंगे, मोहब्बत बेतकल्फी कर देती है इंसान के अंदर पैदा। तो जब लड़की लड़का पहले बेतकल्लुफ बहुत हो जाते हैं ना, तो फिर बास दफा बाद में वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इंसानी जज्बात को एक साथ रुख पे रखें तो इंशाल्लाह उससे फायदा होता है। अगला फायदा निकाह का है कि निकाह इंसान के लिए बायसे राहत और सुकून है। इसकी दलील हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों और खुशबू की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी गई और मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। इसे निसाई ने रिवायत किया। हुब्बी व इलैया निसा व तीबू व जुइलत कुर्रतु आइनी फिस सलाती। इस हदीस में आप देखिए कि जो निसा का लफ्ज है ना, ये बीवी के लिए आया है। लफ्ज अनिसा अरबी जुबान में औरत के लिए भी आता है इमरातन से और बीवी के लिए भी आता है। यहाँ ये लफ्ज बीवी के लिए है और यही लफ्ज सूरत आले इमरान की आयत 13-14 भी है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, वहां भी इस्तेमाल हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से मोहब्बत करने वाले थे। आगे हम एक पूरा टॉपिक इस पे पढ़ने वाले हैं कि अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ कैसे थे। तो बीवी से मोहब्बत करना ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम होता है। बड़े खुश नसीब वो मर्द होते हैं जिनको अपनी बीवी से मोहब्बत हो। मामला बाज दफा बरक्स भी होता है, बीवी से तो मोहब्बत होती है लेकिन किसी दूसरे की, और ये कहाँ होता है, जहाँ हदें टूटती हैं। आज के दौर का आपको पता है ये फितना है। पहले जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस थे ना, वो अनमेरिड्स के होते थे आपस में, भाई शादी नहीं हुई तुम भी किसी से कर लो मोहब्बत, तुम भी कर लो। इस दौर के अंदर अब जो ज्यादा केसेस है ना, वो शादीशुदा लड़के लड़कियों के दूसरे दोस्त की बीवी से इन्वॉल्वमेंट के और दूसरे दो शोहर के दोस्त से इन्वॉल्वमेंट के दिखते हैं। तो ये बहुत बड़े फितने का एक अलार्म है हमारे लिए कि किस तरीके से हम लोग अपनी दूसरी तरफ जा रहे हैं। और अगर कोई शोहर अपनी बीवी से कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो कोई बुरी बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात उसके लिए दलील है। फिर खुशबू की मोहब्बत डाली गई, आपको खुशबू भी अच्छी लगती थी और फितरत के करीब रहते हुए हर इंसान को खुशबू पसंद है। इसके बावजूद आप इस हदीस में बैलेंस देखिए लाइफ का कि औरतों से खुशबू से मोहब्बत है लेकिन ये मोहब्बत नमाज से नहीं रोक रही। नमाज का वक्त जब आता है आपकी बीवियां फरमाती हैं कि आप हमारे साथ घर में मसरूफ होते हैं, हम बातचीत करते हैं अपने जैसे बेतकल्फी में लोग घर में होते हैं, तो इतने में मौज़िन अज़ान देता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से उठ के इस तरह चले जाते जैसे हमें कोई पहचानते ही नहीं है। क्यों? कि जुइलत कुर्रतु आइनी फिस सलात, ये है बैलेंस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सारी बीवियों से मोहब्बत थी लेकिन हजरत आयशा के अदब हुसन अखलाक की वजह से अल्लाह ने उनकी मोहब्बत ज्यादा हजरत आयशा के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाली थी। आपको पता है कि अल्लाह के नबी ने इसको कैसे बैलेंस किया हुआ था कि जिस रात हजरत आयशा के साथ आपकी बारी होती थी ना, तो कुछ हिस्सा गुजरने के बाद रात का आप जन्नतुल बकी में जाते थे, कब्रों को देखते थे कि अल्लाह कहीं इस बीवी की मोहब्बत में मैं गाफिल ना। इस गदा उतमिना लिका तुबव्यू मकायद अल क़िताल, सूरत आल इमरान। हमारी इस क्लास में माशाल्लाह जो यहाँ ऑनगोइंग क्लास है, हमने बहुत थोड़े दिन पहले ही आयतें पढ़ी गज़वे उहद के ज़िमन में कि वह इस गदा उतमिना अहलिका, आप अपनी बीवी के पास थे और अल्लाह का हुक्म आ गया चलो तो आप उहद के लिए चल पड़े। ये है बंदा मोमिन, दिल उसका अल्लाह की तरफ अटका हुआ है लेकिन जिस्म उसका घर में होता है। और अच्छे मर्द जो होते हैं ना, उनकी भी ये पहचान है, या उनका दिल मस्जिद में लगता है या घर में लगता है। बाजारों में फिरने वाले काम धंधे के लिए जाते हैं लेकिन उनका दिल नहीं लगता बैठकों में और इधर उधर, वो घर में रहते हैं। एक मौके पे आपने एक सहाबी ने जब कहा कि अल्लाह के नबी आप मुझे कुछ नसीहत करें, तो उनको भी यही कहा कि घर में करार पकड़ो। औरतों को नहीं, मर्दों को ये बात कही जा रही है। तो ये तकाजे अल्लाह की याद से गाफिल ना करें। बस शोहर बीवी आपस में मोहब्बत में मगन है और नमाज का वक्त आ जाता है, जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो, क्योंकि अल्लाह का बुलावा है। फिर इस मौके पे मुझे हजरत हंजला भी याद आ रहे हैं। गजवे उहद की जब कॉल आई तो ये न्यूली वेड थे, शादी के चंद दिन गुजरे थे, और जब पुकार आई तो बीवी को छोड़ा और मैदाने जंग में पहुंच गए और इस तरह बेदर्दी से लड़े, शहीद हो गए। जब जंग खत्म हुई तो उनकी बीवी लिपटी हुई चादर में शर्माती हुई आई कि ये बता दूं कि हंजला जब आए थे तो वो जुनाबत की हालत में थे, इतना भी वक्त नहीं निकाला कि मैं पहले गुसल कर लूं या इस्बाब नहीं होंगे और अल्लाह की पुकार पे चल पड़े। मैं इसलिए बताने आई हूँ कि शोहदा को गुसल नहीं दिया जाता, तो ऐसा ना हो कि कहीं उनको गंदगी की हालत में दफन कर दिया जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि गम ना करो, मैं देख रहा हूँ कि फरिश्ते हंजला को गुसल दे रहे हैं। और सहाबे कराम कहते हैं कि जब शोहदा की लाशों को उठाया गया उहद के मैदान में, तो हंजला की लाश को जब उठाया तो उसमें से पानी के कतरे थे। ये है असल बैलेंस। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कह के आगे चलती हूँ कि मैदान जंग के लिए कौन निकल सकते हैं बीवी को छोड़कर जो नमाज के लिए उठ सकते हैं। हमारी नमाजें कब बिगड़ती हैं? फजर की, जब हमारी शादी हो जाती है। बहुत सारे मर्द 5 वक्त के नमाजी, मस्जिद के नमाजी होते हैं, शादी के बाद नमाजों में गड़बड़ शुरू हो जाती है। बस ये बैलेंस रखिए फिर खुश हो, फिर जिंदगी में कोई मसला नहीं है। इसीलिए आपको पता है कि जनाबत की हालत में जब कोई होता है तो उसका इंतहाई वक्त क्या है, कब गुसल कर सकते हैं? जब अगली नमाज का वक्त आ जाएगा। तो इस चीज से पता चलता है कि हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद साथ साथ चलते हैं। हम खुद से एक सवाल यहाँ पूछ सकते हैं, क्या मेरी आंखों की ठंडक भी नमाज है? क्या मुझे नमाज में ठंडक मिलती है? हम बाज़ दफ़ा अपने बच्चों को आंखों की ठंडक कहते हैं, कभी माल को, कपड़ों को, कुछ कपड़ों को देख के मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं जब हमारी वार्डरोब में पहुंच जाते हैं। कोई ज्वेलरी का सेट है, कई दिन से तमन्ना थी कि बस ये मिल जाए, मुझे मिल गया तो आंखें ठंडी हो गई। क्या हकीकत में हमें नमाज से भी इतनी खुशी मिलती है? अगला बेनिफिट है ना निकाह का, कि निकाह से दीन मुकम्मल होता है। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई शख्स निकाह कर लेता है तो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है, लिहाजा उसे चाहिए कि बाकी आधे दीन के मामले में अल्लाह ताला से डरता रहे। इसे बहकी ने रिवायत किया। क्यों भाई? ये हदीस बहुत मारूफ है और इसको समझना भी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। और वो कैसे कि आधा दीन इंसान का निकाह से पूरा कैसे होता है? आप में से कोई बताना चाहता है कि इस हदीस को सुन के उसके दिल में एकदम कैसे ख्याल आया कि कैसे आधा दीन? थोड़ी सी आपकी भी इंटेलेक्ट यूज होनी चाहिए। जी कोई बताना चाहता है आधा दीन निकाह से कैसे कंप्लीट होता है? ठीक है जी, आप देखिए कि इसको डिफरेंट समझा जा सकता है कि आधा दीन कैसे। अगर हम इसको देखें तो आधा इस तरह बनता है कि हमें दो किस्म की भूख लगती है, एक जिस्मानी भूख और एक जज्बाती भूख। निकाह की सूरत में जब हमारे जज्बात को सुकून मिल जाता है तो वो सारी बातें जिसको हम पीछे देखते आ रहे हैं कि जिसमें इंसान दूसरी सेक्स की तरफ माइल होता है, वो सब खत्म हो जाती हैं। बाकी आधा दीन जो है ना, वो रिस्क और माश के जरिए पूरा हो जाता है। और ये दीन का कौन सा हिस्सा है कि जिसके अंदर इंसानों के साथ मामला देखे जाते हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि जब आधा निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन इस तरह भी पूरा होता है कि इंसान एक किस्म का अपने आप को मुतमईन पाता है। निकाह के बाद उसको एक किस्म की सेचुरेशन का एहसास होता है कि अब मैं एक बैलेंस लाइफ गुजार रहा हूँ, और उसके जहन से काफी मसले खत्म हो जाते हैं। जैसे आप देखिए कि शादी होने के फौरन बाद वो कहते हैं ना, बंदा ठिकाने लग जाता है, जहाँ होनी थी हो गया, जो मिलना था मिल गया, और उसके बाद उसका पूरा फुल फोकस जो है वो ग्रो ग्रो अप में होता है कि अब मुझे अपनी लाइफ को मजीद कैसे बेहतर करना है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बाकी आधे दिन के मामले में डरता रहे, इसमें माश का मामला आता है, रिस्क हलाल कमाना, और इसी तरह बाकी चीजों में अल्लाह का तकवा रखना। फिर इसके बाद है जो शख्स गुनाह से बचने के लिए निकाह का इरादा करे, अल्लाह ताला उसकी जरूर मदद करता है। ये नोट कीजिएगा, गुनाह से बचने के लिए निकाह का इरादा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तीन आदमियों की मदद करना अल्लाह ताला के जिम्मे है। कितना खूबसूरत अंदाज है, जो जिम्मेदारी ले ले वो और बात है। और उसमें पहली, वो गुलाम कौन है जिसका अल्लाह ताला जिम्मा लेता है? वो गुलाम जो आजादी हासिल करने के लिए अपने मालिक से मुआहदा करना चाहे। ये एक टर्म है जो आज के दौर में ज्यादा मारूफ नहीं, इसकी जरूरत नहीं है बात करने की ज्यादा। दूसरी, बुराई से बचने की नीयत से निकाह करने वाला, अल्लाह इसकी मदद करे। कैसे मदद करेगा? बस उसके पास असबाब नहीं है, बीवी को रखने के लिए घर नहीं है, उसके इस्तेमाल की चीजें नहीं, अल्लाह मदद करेगा। यही बात सूरत नूर में भी आती है कि अपने अय्यम लोगों के निकाह कर दो। अय्यम कहते हैं बेजोड़ को, जिसका जोड़ मतलब रिश्ता नहीं, अकेला बंदा, जिसको हम छड़ा भी बोलते हैं अपनी जुबान में, रांड बोलते हैं, कि जिनके पास नहीं है उनके निकाह कर दो, अल्लाह उनको गनी कर देगा। हमारे यहाँ बाद शादियां सिर्फ इसलिए कई कई साल लेट की जाती हैं कि अभी लड़का अपने पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ वो तो 1.5 साल का ही खड़ा हो गया था, माँ बाप को दिखता ही नहीं है। तो पाँव पे खड़े होने के शौक में लड़कों की शादी लेट नहीं करनी चाहिए, इससे हमें ये समझ आती है। निकाह नस्ल इंसानी की बका का जरिया है। क्यामत के रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की कसरत पर फख्र फरमाएंगे। हजरत माकल बिन यसार रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, एक खूबसूरत और अच्छे हसब नसब वाली औरत है, लेकिन इसके यहाँ औलाद नहीं होती, क्या इसे निकाह करूँ? यानी उसकी पहले कहीं शादी हुई होगी और बच्चे नहीं हुए, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम था और शादी के बच्चों के काबिल नहीं थी। नोट कीजिए फर्क बातें हैं, एक बच्चे ना होने के काबिल होना और एक जिंसी जज्बात का ना होना, दोनों बहुत फर्क है। जैसे बहुत सारी औरतों का शादी के बाद पता चलता है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है और ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तो कहा कि ऐसी औरत से शादी कर लूं? आपने फरमाया ना करो। फिर वो दूसरी मरतबा हाजिर हुआ, आपने फिर इसे मना फरमा दिया। फिर वो तीसरी मरतबा इजाजत लेने के लिए हाजिर हुआ तो आपने इरशाद फरमाया, मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से निकाह करो, क्योंकि मैं अपनी उम्मत को तुम लोगों यानी मुसलमानों की वजह से बढ़ाना चाहता हूँ। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। ये बताइए, इसके मुकाबले में हमारे ही मुल्कों का ये स्लोगन कि दो बच्चे खुशहाल घराना, कम बच्चे खुशहाल घराना, ये जुमला कैसा लग रहा है? हैरत की बात नहीं है? वही लोग जो अपने मुल्कों में बच्चे पैदा करने पे ग्रांट दें, लीव्स दें, वेकेशंस दें, बेनिफिट्स दें, वही हमारे मुल्कों में ये नजरियात आम करते हुए दिखते हैं कि थोड़े बच्चे होने चाहिए। शायद इसमें यही सोच है कि मुसलमान बाकी चीज़ों में पीछे हैं तो इसमें भी पीछे रहें। तो फितरतन अल्लाह ताला ने जिस बात को पसंद किया वो क्या कि औरत के ज़्यादा बच्चे हों। आप फिर सोच में पड़ जाएंगे, हाय ज्यादा हो गए तो पालेंगे कैसे, वी कैंट अफोर्ड। हाँ, आप उसकी मदर केयर की नैपीज अफोर्ड नहीं कर सकते, आई नो। आप उसके मैचिंग ब्लू शूज नहीं अफोर्ड कर सकते, पिंक नहीं कर सकते, आप हेड टू टो उसको मैच नहीं कर सकते। अदरवाइज बच्चे को अफोर्ड करना क्या मुश्किल है, दूध तो अपना साथ लेके आता है। सोचने की बात है, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बच्चों को हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए हम इनको लिमिटाइज कर देते हैं। हालांकि आप देखिए कि हर बच्चे के साथ दो हाथ भी आते हैं, और फिर उसके बाद ये है कि हर बच्चे का अपना नसीब होता है। ये मालथियस का नजरिया आज से तकरीबन 50 साल पहले, ये भी इंग्लैंड से उठा था नजरिया, कि दुनिया की शरह आबादी जिस रफ्तार से फैल रही है, जो रिसोर्सेज है उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, और उसने कहा अगले 50 सालों में दुनिया खत्म हो जाएगी, खाने पीने में कहत खत्म पड़ जाएगा अगर फैमिली प्लानिंग ना की। वो दिन था जहां से ये पॉपुलेशन कंट्रोल का नजरिया शुरू हुआ, और आज आप देख लीजिए कि हमारे अपने मुल्क उसकी जद में आए हुए हैं। ये गैर इस्लामी तरीका है कि आप सोचें कि बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्लाह ताला खुद ब खुद अपनी रहमत से इसके असबाब पैदा करता है। आप इसको देखिए, पहले आप सब अपनी नानियों दादियों का तस्वुर करें, कम से कम भी बच्चे होते थे ना तो 6 होते थे, 4 बेटे 2 बेटियां, 2 बेटे 4 बेटियां। आप ज्यादा से ज्यादा किसी को जानते हैं तो बोल के बता दें कि आपके जानने मिलने वालों में किसके बच्चे सबसे ज्यादा थे। मेरे जहन में जो एक फिगर है वो 18 बच्चों का भी है। आप देखिए, वो खुश थे कि 2 बच्चों वाला खुश है? कभी आप पूछिए अपनी नानी दादी या जो भी घर में बुजुर्ग है उनसे कि क्या कभी कोई मसला हुआ था? असल मसला ये था कि ये हमारे वाले प्रोटोकॉल नहीं थे ना, जो है चटनी कूट दी माँ ने, रोटी पे रख दी खा लिया। तो कभी ये ना सोचिए कि बच्चे ज्यादा होंगे तो हम उनको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। फिर अगली रिवायत है हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जनने वाली औरत से निकाह करो, क्योंकि मैं क्यामत के रोज दूसरे अंबिया के मुकाबले में तुम्हारी वजह से अपनी उम्मत की कसरत चाहता हूँ। इसे अहमद और तबरानी ने रिवायत किया। यहाँ से भी आप देखिए कि जब हम इस तरह के स्लोगन बोलते हैं कि कम बच्चे हों और दो हों, तो फिर नतीजा तो वही होगा ना कि क्यामत के दिन नबी सल्लम को खुश नहीं कर पाएंगे। अच्छा, असबाब भी होते हैं। अब आप में से कुछ बच्चियां मेरे से नाराज ना हों तो मैं कुछ कहूँ कि आजकल की बच्चियां एक दो से ज्यादा बच्चा पैदा भी नहीं कर सकती। सच है कि झूठ? जो जिस्म है, जो फिगर है, जो खाना है, जो फूंक फूंक के खाना है, कोक और बर्गर पे तो ये जिंदा है। जब इनका ब्लड प्रेशर लो होता है तो कोक पीती है। मैं ऐसी बच्ची को देख के हैरान हो गई, सुबह उठते ही कहती है पहले मुझे कोक चाहिए। क्यों? वो एनर्जी लेवल लो हो रहा है। तो नेचुरल लाइफ होती है ना, तो उसमें ये भी नहीं है कि आप एक एक कैलोरी गिन गिन के खाएं। जो काम गिनना है वो करें, गुना गिन गिन के करें। हाँ, एक गिन लिया, दो गिन लिया, नेकियां गिने कि ज्यादा करनी है। हमने जब अपने जिस्म को बुत बना के पूजना शुरू किया ना, तो हम कई दफा कमर नापते हैं और कई दफा फिगर नापते हैं। नेचुरल रहिए, जो अल्लाह, हम कोई शोपीस नहीं है। हमें को मिस वर्ल्ड के मुकाबले पे नहीं जाना कि हम अपने फिगर को रखें। और बास दफा मासूम बच्चों को दूध से महरूम कर देती हैं मैं, अपना दूध नहीं पिलाती। क्यों? कहती हैं फिगर खराब हो जाएगा। तो ये जिस्म पूजने के लिए नहीं दिया, ये कोई बुत नहीं है, ये नस्लों की खुराक थी हमारे जिस्म में। फिगर थोड़ा अगर मोटा होता है, बास यकीन करें औरतें इसलिए भी खौफ खाती हैं ज्यादा बच्चों से, फिर कहती हैं जिस्म लटक जाता है। क्या करना है इसको पूछ के? फित्र, आप तो ऐसे ही कह सकते हैं कि कोई फैक्ट्री ओनर है और वो अपनी फैक्ट्री की प्रोडक्शन इसलिए लिमिटाइज कर दे कि मेरी मशीनें ना घिस जाए। हाँ, वो तो शुक्र करेगा ये खत्म होंगी, मैं और ले आऊंगा ताकि मेरी प्रोडक्शन तो बढ़े। तो इस मौजू पे अब अगर आप कुछ कहना चाहें जो इस टॉपिक में बात हुई, तो मोस्ट वेलकम, हैंड रेज कर सकते हैं। इन्होंने इस पे बात सुनी है किसी डिबेट में कि इससे मुराद कसरते फर्द नहीं, बल्कि ये कि आलिम हो और दीनी तौर से कसरत हो। आप हदीस के अगर अल्फाज को देखें ना, फा इन्नी मुकासिरुम बिकुम, अरबी का असूल याद रखिए, जब कोई बात सिंपल समझ आ जाए तो उसमें फिर इधर उधर उसके मानों को नहीं लेके जाते। कसरत में खर्च क्या है, यानी जब क्या मतलब है कि अल्लाह के नबी को अफराद की सूरत में कम चाहिए? बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई एक जरनैल हो, वो ये ना चाहें कि मेरे साथ 1 लाख फौजी हों। बस वो ये कहे, नहीं जी मुझे 1 लाख फौजी नहीं चाहिए, मेरा मतलब ये है कि बस 1,000 ही हों लेकिन ताकत वाले बहुत हों। डजेंट मेक एनी सेंस, राइट? तो बिल्कुल क्लियर हदीस है कि कसरत, अफराद वाली कसरत मुराद है, और ऑफ कोर्स क्वालिटी के लोग हों, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। ठीक है, और कोई सवाल? जी, इन्होंने सवाल तो नहीं लेकिन कमेंट दिया है, मैं दोहरा देती हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलें तो अल्लाह ताला से पूछें कि मैं कैसी लग रही हूँ। यकीन करें बहुत सारी चीज़ों में इत्तेदाल आ जाता है, एक लम्हे में अल्लाह से अगर पूछ लें कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक है।